दिन भर 3 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। 38 दिनों से फरार चल रही हनीप्रीत कौर गिरफ्तार।
बस कुछ इनपुट्स आई थी कि ये चंडीगढ़ के आसपास इनकी प्रेजेंस है, तो आज आपने देखा होगा पंचकूला के अंदर काफी हमने नाकाबंदी इफेक्टिव और काफी एक्सटेंसिव कर रखी थी।
अमेरिका में कल हुई गोलीबारी की जांच जारी, मारे गए लोगों के सम्मान में शोक सभाएं। और बताएंगे क्या हाल है बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या हिंदुओं का। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की करीबी हरिप्रीत को हरियाणा पुलिस ने पटियाला से गिरफ्तार कर लिया है। राम रहीम के जेल जाने के बाद से वो फरार थीं। पंचकुला के कमिश्नर एसएस चावला ने बताया है कि पुलिस उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड लेने का अनुरोध करेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बीएसएफ कैंप पर मंगलवार को चरमपंथी हमला हुआ, जिसमें बीएसएफ के एक एएसआई की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। हमला करने वाले तीनों चरमपंथी भी मारे गए हैं। श्रीनगर के पुलिस आईजी मुनीर खान ने बताया कि हमला सुबह 5 बजे के करीब हुआ। फिजिक्स का नोबेल प्राइज अमेरिका के रेनर वेइस, बैरी बैरिश और किप थोन को मिला है। उन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स पर काम करने के लिए इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया। मैसाच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इन वैज्ञानिकों ने स्पेस टाइम में तरंगों की खोज की है। करीब 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम स्पेस का सिद्धांत दिया था, मगर इन तरंगों को कभी देखा नहीं गया था। नोबेल कमेटी फॉर फिजिक्स के चेयरमैन नील्स मॉर्टेंसन ने कहा कि इन वैज्ञानिकों के काम से एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक नई फील्ड की शुरुआत होने जा रही है, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। इससे हमें ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड क्रियाओं और ग्रेविटी की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। ये थे नोबेल कमेटी फॉर फिजिक्स के चेयरमैन के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस वेगस के एक कॉन्सर्ट में हुई गोलीबारी को अंजाम देने वाले शख्स के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 95 लोगों को मारने वाले और 500 लोगों को जख्मी करने वाला स्टीफन पैडक कई समस्याओं से जूझ रहा था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसने अपने घर और होटल के कमरों में 45 हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया हुआ था। कैटालोनिया को स्पेन से अलग करने को लेकर रविवार को हुए विवादास्पद जनमत संग्रह के दौरान पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बार्सिलोना में लोगों ने प्रदर्शन किया। कई संगठनों ने पुलिस पैरकों और स्पेन की सत्ताधारी पीपल्स पार्टी के क्षेत्रीय मुख्यालय का घेराव भी किया। मजदूरों ने काम नहीं किया और यातायात भी प्रभावित रहा। हड़ताल के चलते स्कूल और दुकानों को भी बंद रखा गया। कैटालोनिया की संसद में विपक्ष के नेता जुआन कार्लोस हेराल्टा ने बीबीसी को बताया कि मौजूदा कैटलन प्रशासन अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, इसलिए स्पेन से बातचीत के लिए नए नेतृत्व का चुनाव होना चाहिए। हमें लगता है कि नई कैटलन सरकार ही किसी तरह की बातचीत या समझौते कर सकती है। किसी तरह के नतीजे पर पहुंचना जरूरी है, मगर ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार वैध और विश्वसनीय हो। मौजूदा प्रशासन के पास स्पेन से बातचीत करने का अब कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि कैटलोनिया में चुनाव होने चाहिए। ये थे कैटलन संसद में विपक्ष के नेता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के पूर्व राष्ट्रपति और कुर्द नेता जलाल तालाबानी का जर्मनी में 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वो सद्दाम हुसैन के हटने के बाद हुए समझौते के तहत इराक के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने इराक को एक करने और पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की थी। उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व में इराक में सेनाएं आने का भी स्वागत किया था। उन्होंने किशोरावस्था में कुर्द राजनीति में कदम रखा था। कुर्द उन्हें अंकल जलाल के नाम से पुकारते थे। रूस ने उम्मीद जताई है कि उसके यहां अमेरिका के नए राजदूत दोनों देशों के आपसी रिश्तों को बेहतर करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि वाशिंगटन की वजह से दोनों देशों के संबंधों को जो नुकसान पहुंचा है, जॉन हंट्समैन उसकी भरपाई कर सकते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रियाबकोव ने उम्मीद जताई कि दोनों देश अपने बीच उभरी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिए जाने के बाद 38 दिनों से फरार चल रही हनीप्रीत कौर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार कर हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया। इन 38 दिनों के दौरान वो कहां कहां रही, पुलिस इसकी भी जांच करेगी। रविंदर सिंह रोबिन की रिपोर्ट।
हनीप्रीत इंसा, जो कि पिछले लगभग सवा महीने से फरार थी, को हरियाणा पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद से वे पुलिस से बच रही थी। हनीप्रीत की गिरफ्तारी की पुष्टि पंचकुला के पुलिस कमिश्नर AS चावला ने की है। आज पंचकुला में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने बताया कि हनीप्रीत को पकड़ने के लिए सभी जगह पर नाकेबंदी कर रखी थी। पुलिस कमिश्नर चावला ने इस बारे ज्यादा जानकारी देते हुए हमें बताया,
हमारे पास कुछ इनपुट्स आई थी कि ये चंडीगढ़ के आसपास इनकी प्रेजेंस है, तो आज आपने देखा होगा पंचकुला के अंदर काफी हमने नाकाबंदी इफेक्टिव और काफी एक्सटेंसिव कर रखी थी, तो उसके तहत जो खबर आई जिसके बेसिस पे पटियाला रोड से इनको वहां से राउंड अप किया गया, और उस समय इनके साथ एक लेडी और थी, तो उनको भी एक बार क्वेश्चनिंग के लिए लेकर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो SIT है, वो इसको इंटरोगेट कर रही है, और जैसे हालात आएंगे उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बताते चले कि हनीप्रीत पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसक वारदातों में उन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काया था। हनीप्रीत की तलाश में पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया था, और उनकी तलाश में पुलिस ने नेपाल सीमा तक छान मारी थी। लेकिन कल देर रात कुछ TV चैनल्स के पत्रकारों के साथ बात करने के बाद पुलिस ने पंजाब और हरियाणा में कई जगह पर छापेमारी तेज कर दी थी, और उन्होंने आज 3 बजे के करीब पटियाला के पास हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया था। हनीप्रीत के साथ एक अन्य लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस इस बारे ज्यादा जानकारी नहीं दे रही।
डिटेल्स नहीं जाऊंगा अभी। जो कॉन्स्पायरेसी जो 25 तारीख को वायलेंस हुई है, उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।
हनीप्रीत को बुधवार को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की रिक्वेस्ट करेगी। हनीप्रीत के गुरमीत राम रहीम के काफी नजदीक होने के कारण उनकी गिरफ्तारी के बाद डेरा सिरसा के कई और राज खुलने की उम्मीद की जा रही है। पंजाब से BBC हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट के पास BSF कैंप पर आज चरमपंथी हमला हुआ, जिसमें BSF के एक ASI की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। हमला करने वाले तीनों चरमपंथी मारे गए हैं। 4 स्तरीय सुरक्षा के बावजूद 2 चरमपंथी एडमिन ब्लॉक तक घुस चुके थे। हालांकि चौकस जवानों ने संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद उन्हें मार दिया। रक्षा विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने संवेदनशील इलाके में स्थित BSF कैंप के अंदर घुसने में वो कैसे कामयाब हुए। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
मंगलवार सुबह को राजधानी श्रीनगर का हुमहमा इलाका गोलियों और धमाकों से उस समय गूंज उठा जब इलाके में कायम सीमा सुरक्षा बल या BSF के कैंप में 3 फिदायीन हमलावर दाखिल हो गए। यह कैंप श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बिल्कुल करीब है, जबकि कुछ ही दूरी पर BSF और CRPF का हेडक्वार्टर भी है। चरमपंथियों ने कैंप में दाखिल होने के साथ ही हैंड ग्रेनेड से हमला करने के अलावा अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में BSF के 3 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें से एक अधिकारी ASI बीमक यादव की में मौत हो गई। कैंप से स्थित कॉलोनी में रहने वाले मुदस्सिर ने बताया कि हम उस समय सो रहे थे जब गोलियों और धमाकों की जोरदार आवाजों ने हमें खौफजदा कर दिया।
उस टाइम में सर सो रहा था, आजान थोड़ी बाद हुई, मैंने अचानक से एक पटाखे जैसे आवाज़ आई, 5-6, फिर बड़ी बड़ी धमाकों की आवाज़ आई, और मैं उठ गया कमरे से बाहर निकला, क्या हुआ, फिर शोर बहुत हुआ, हम डर रहे थे क्या यहाँ पर भी मत ना था। फिर हम घर से निकले, दूसरे गांव में गए, इसे हैदरपुरा में गए।
11 घंटों तक चलने वाले इस ऑपरेशन में पुलिस ने 3 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। कश्मीर जोन के IG पुलिस मुनीर खान ने श्रीनगर में इस हमले की जानकारी देते हुए बताया,
द अटैक वाज वेरी इफेक्टिवली रिपल्स्ड इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ।
آئی جی بتا رہے تھے کہ چرم پنتھی بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ حملے کی غرض سے کیمپ میں داخل ہو گئے تھے اور بی ایس ایف کو کافی بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھے، جس کوشش کو بی ایس ایف کے مستعد جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس، بی ایس ایف اور سی آر پی ایف نے مل کر چرم پنتھیوں کے خلاف کامیاب ابھیان چلایا۔ چرم پنتھیوں نے کیمپ میں داخل ہونے کے بعد کیمپ کی دو عمارتوں میں شرن لی تھی۔ آئی جی پولیس منیر خان نے اس حملے کے لیے جیش محمد چرم پنتھی سنگٹھن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حملے کے بعد قریب 3 گھنٹوں تک ایئرپورٹ جانے والے سبھی راستوں کو پولیس نے سیل کر دیا تھا، جبکہ سری نگر سے جانے والی اور دلی سے آنے والی کئی اڑانوں کو رد کیا گیا۔ تاہم پولیس نے بتایا کہ صرف دلی سے آنے والی ایک اڑان کو رد کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ حملہ کرنے والے فدائین بیتی جولائی کو سیما پار کر کے کشمیر میں داخل ہو گئے تھے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک پاکستان ہمارا پڑوسی ہے تو ایسے حملوں کی بھوشیہ میں بھی ہونے کی آشنکا کی جا سکتی ہے۔ دکشنی کشمیر کے پلوامہ میں بھی اسی طرح کا ایک فدائین حملہ چرم پنتھیوں نے بیتے مہینے انجام دیا تھا۔ اس حملے میں 8 سرکشا کرمیوں کی موت ہو گئی تھی۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
امریکہ میں لاس ویگس میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اب کسی اور خطرے کی جانکاری نہیں ہے۔ شہر میں انیہ بندوق دھاریوں کے ہونے کی افواہوں کے بیچ پولیس نے کہا کہ ایک ہی بندوق دھاری تھا جو کہ اب مر چکا ہے۔ اس بیچ جانچ جاری ہے اور دیش میں بندوقوں پر پرتیبند لگانے کے بارے میں بحث بھی شروع ہو چکی ہے۔ نیو یارک سے سلیم رضوی نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
رویوار کی رات کو ہونے والے لاس ویگس کے گولی باری کانڈ کے بعد اب بھی پولیس کی جانچ جاری ہے۔ نوادا کے مسکیت علاقے میں استھت حملہور کے گھر اور مینڈلے بے ہوٹل کے اس کے کمرے کی گہن چھان بین جاری ہے۔ اس بیچ شہر میں کچھ انیہ بندوق دھاریوں کی افواہوں کے کارن پولیس نے زور دے کر کہا ہے کہ بس ایک ہی حملہور تھا جو مر چکا ہے، اب کسی خطرے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسسٹنٹ شریف ٹاڈ فسولو نے پترکار سمیلن میں کہا،
وی ہیو نو انفارمیشن اور ایویڈنس ٹو سپورٹ دیٹ تھیوری اور دیٹ رومر، وی بلیو دیئر واز اونلی ون شوٹر اینڈ دیٹ واز سٹیون پیڈک۔
عام لوگوں کے لیے یہ سندیش بہت اہم ہے کہ ہمیں اب کسی انیہ بندوق دھاری کے خطرے کی جانکاری نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی خبر ہوگی تو ہم اس کے بارے میں عام لوگوں کو ضرور بتائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی بندوق دھاری تھا اور وہ تھا سٹیفن پیڈک۔ سہائک شریف نے یہ بھی بتایا کہ حملہور سٹیفن پیڈک کے کمرے سے جو بندوقیں برآمد کی گئی ہیں ان کی سنکھیا 23 ہے اور اس حملہور کے گھر سے 19 انیہ بندوقیں ملی ہیں۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ابھی جانچ جاری ہے اور ابھی یہ نہیں پتا کہ اس حملہور نے گولی باری کیوں کی۔ اس بیچ لاس ویگس شہر میں حملے میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں سوموار کی رات شوک سبھائیں آیوجت کی گئیں جن میں ہزاروں لوگوں نے بھاگ لیا۔ ایک شوک سبھا میں بھاگ لینے پہنچی لاس ویگس کی میئر کیرولین گڈمن کہہ رہی تھی کہ ہمارے سنکلپ کو ایک بیمار اور وکرال ویکتی برباد نہیں کر سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لاس ویگس شہر بھر کے کئی اسپتالوں میں رکت دان کرنے کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ رویوار کی رات ستھانی سمے کے انوسار 10:30 بجے کے قریب مینڈلے بے ہوٹل کی 32ویں منزل کے اپنے کمرے سے بندوق دھاری نے سڑک کے اس پار جاری سنگیت کارکرم میں شامل ہزاروں لوگوں پر رائفلوں سے گولی باری کی تھی۔ اس حملے میں 59 لوگ مارے گئے اور 527 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سماچار ایجنسی اے پی کے انوسار بندوق دھاری نے اپنی 2 بندوقوں میں ایسے اوزار لگائے تھے جس سے سیمی آٹومیٹک بندوقیں پوری طرح آٹومیٹک رائفل کی طرح چلتی ہیں۔ بمپ سٹاک نام کے اس اوزار کے لگانے کے بعد بندوقیں آٹومیٹک کی طرح چلتی ہیں، یعنی ایک بار ٹریگر دبانے سے 1 منٹ میں 400 سے 800 راؤنڈ گولیاں چلتی ہیں۔ امریکہ میں 1930 سے عام ناگرکوں کے اسالٹ رائفل رکھنے پر پرتیبندھ ہے، لیکن M15 جیسی رائفل جو دور تک مار کرتی ہے وہ کسی بھی بندوق کی دکان سے آسانی سے خریدی جا سکتی ہے۔ اب اس تازے حملے کے بعد امریکہ میں بندوقوں کی بکری پر پرتیبندھ لگانے کے بارے میں پھر بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار گولی باری کے حملوں کے بعد بحث تو ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
یہ بی بی سی ہے، آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ۔ پچھلے دنوں چھاتراؤں کے پردرشن اور پھر اس کے بعد ہوئی ہنسا کو لے کر چرچا میں رہا بی ایچ یو کیمپس۔ چھٹیوں کے بعد آج جب دوبارہ کھلا تو وہاں काफ़ी शांति थी। छात्राओं के हॉस्टल के बाहर कुछ वैसी व्यवस्थाएं कर दी गई थीं जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन उपकुलपति की छुट्टी और उनकी मौजूदगी को लेकर न सिर्फ कैंपस बल्कि उसके बाहर भी संशय बना हुआ है। वीसी प्रोफेसर गिरीश चंद त्रिपाठी कहाँ हैं इस बारे में विश्वविद्यालय के जिम्मेदार लोगों को भी पता नहीं है। पूरे ब्यूरो के साथ समीर राजपत मिश्र।
कई दिनों तक चले हंगामे और उसके बाद हुई हिंसा के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका बीएचयू कैंपस मंगलवार को करीब 10 दिन बाद जब खुला तो वहां काफ़ी शांति थी। छात्रावासों में अभी छात्र छात्राओं का आना जारी है, लेकिन जो छात्र पहुंच चुके हैं वो शायद अब पढ़ाई के मूड में हैं, आंदोलन के नहीं। बीएचयू की नई प्रॉक्टर डॉक्टर रोयाना सिंह की माने तो ऐसा ही है।
माहौल बहुत अच्छा है, सुबह से क्लासेस हम प्रोफेसर श्रद्धा सिंह मेरे सामने बैठी आज फैकल्टी में, जहाँ की सबसे सेंसिटिव हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ह्यूमैनिटीज से दो क्लास लेके आई हैं। बच्चे खुशी खुशी क्लासेस में है, खुश हैं, बच्चों ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, बहुत खुश नजर आ रही है, एक्टिव नजर आ रही। हम भी एमएम भी गए थे, हम आईएमएस मेडिकल कॉलेज गए थे, बच्चे सब लौट आए हैं, कुछ कल शाम को लौट आए थे, कुछ आज सुबह। लड़कों का मुझे पूछना पड़ेगा, मैंने अभी लड़कों का नहीं पूछा, लेकिन फिलहाल लड़कियां तो आ गई हैं।
विश्वविद्यालय में इतनी शांति की वजहें और भी हैं। एक तो अभी तमाम छात्राएं और छात्र आए नहीं हैं, जो आए भी हैं विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वो सुविधाएं मुहैया करा दी हैं जिनकी वो लंबे समय से मांग कर रही थी, और दूसरे शायद उन्हें ये भी उम्मीद है कि अब उन्हें पुराने वीसी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि काफी विवादों में आ चुके वीसी प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी का कार्यकाल 27 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। विधि विभाग की एक छात्रा एकता सिंह 22 सितंबर से शुरू हुए उस आंदोलन में शामिल थीं जो एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद शुरू हुआ था। एकता सिंह के मुताबिक पहले दिन तो काफी शांति थी, आगे क्या होता है ये देखना है।
मैं अभी नहीं आई हूं, अभी आना शुरू हुई है, आज कुछ 4-5 लोग आए हैं, धीरे धीरे आएंगे शायद 5-6 तारीख तक, और बहुत लोग दिवाली के बाद आने का प्लान किया है। बैरिकेडिंग कर दी है उन्होंने,
इस बीच विश्वविद्यालय में जिस बात की चर्चा पिछले दो दिन से सबसे ज्यादा हो रही है वो है उपकुलपति प्रोफेसर वीसी त्रिपाठी का छुट्टी पर जाना। प्रोफेसर त्रिपाठी इस कदर नेपथ्य में चले गए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनके बारे में कुछ नहीं जानता, और इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक लोग उनके बारे में पता लगाने में जुटे हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी अपना फोन न तो उठा रहे हैं और न ही किसी संदेश का जवाब दे रहे हैं। बीएचयू की चीफ प्रोक्टर रोयाना सिंह भी उनके बारे में कुछ नहीं जानती।
मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, मुझे आइडिया नहीं है, एकदम आइडिया नहीं है सर।
वीसी साहब अभी आज ऑफिस में थे या नहीं थे ये तो आपको पता होगा?
ये भी मुझे नहीं पता, मैं तब से बिजी हूँ सुबह 6 बजे से, सच्ची नहीं पता।
वही स्थानीय पत्रकार गिरीश द्विवेदी से जब इस बारे में मैंने बात की तो उनका कहना था,
कल समिति जी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वीसी के बारे में की जानकारी कोई दे दे, लेकिन कोई भी प्रशासन के इवन रजिस्ट्रार बात करने से मना कर रहा है, बीएचयू का पीआरओ जो है फोन नहीं उठा रहा है, जो चीफ प्रॉक्टर है रोयना सिंह वो भी कुछ भी बताने की स्थिति नहीं है। तो इस तरह से बीएचयू के बारे में तो कोई कुछ वक्त नहीं है। सही बात छुट्टी पर जाने की तो हो सकता है कि जहाँ और जब लौट के आए थे एक मेडिकल लगा दें या कुछ लगा दें, ये चर्चा चल रही है कि दिल्ली में बता के गए कि हम बीमार हैं और तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं छुट्टी पे, निजी कारणों से जा रहे हैं। तो आल इन आल है छुट्टी दे करके जाए या कैसे भी आकर के छुट्टी पे कर ले, अब ये चर्चा का ही विषय केवल है, कोई ऑथेंटिक जानकारी न तो किसी मीडिया के पास है न तो कोई अधिकारी यहाँ देने को तैयार है।
बहरहाल उपकुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी देर सवेर कैंपस में आएंगे ही, हालांकि उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि उनकी रवानगी की खबरों की वजह से ही शायद कैंपस में शांति बनी हुई है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
मुंबई में बीते शुक्रवार को एल्फिंस्टन रोड के पास फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कई हाथ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़े, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनमें कुछ लोग पीड़ितों की मजबूरी का फायदा उठाते दिख रहे हैं। सुनिए अभिमन्यु साहा की रिपोर्ट।
बीते शुक्रवार को मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। वीडियो में एक शख्स घायल महिला के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। शवों के बीच दबी महिला मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वो शख्स उन्हें बचाने के बजाय उनसे अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुल की सीढ़ियों के किनारे वो दबी महिला अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। जिनकी कुछ देर बाद मौत हो गई। घटना के दूसरे वीडियो में घायलों के पर्स और ज्वेलरी चुराने का भी मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मदद के बहाने लोग उनके सामान चुराते नजर आ रहे हैं। घटना के चश्मदीद रहे धनंजय साहनी ने चोरी होने की आशंका जताई है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय स्थिति काफी व्यावहारिक थी, कौन क्या कर रहा था कोई ध्यान नहीं दे रहा था।
अभी जो लोग दबे पड़े हैं तो वहाँ में उनके साथ बैग भी होता था, सामान लगेज भी होता था, तो वो बैग्स वगैरह फेंक रहे तो लोग एक दूसरे के इधर उधर हर जगह फेंके हुए थे। पर्स वगैरह स्टेयर्स के नीचे वाला जो पार्ट था उधर फेंका गया था, साइड में सामान फेंके गए थे, बट फेंके जा रहे थे लेकिन उस सामान के कोई उस टाइम पे फोकस आई थिंक नहीं कर रहा था, बट ओवरऑल पब्लिक का फोकस जो दबी हुए लोग थे उन लोगों को निकालने में लगा हुआ। क्राउड ज्यादा था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या करे क्या ना करे, माइंडिंग ब्लॉक हो चुका था बिल्कुल।
अभिमन्यु साहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 साल पहले बायोडीजल बनाने के लिए अमरीकी मूल के जेट्रोफा यानी रतन जोत के पौधे लगाने शुरू किए थे और राज्य के 1.5 लाख हेक्टेयर इलाके को रतन जोत से पाट दिया गया था। रतन जोत लगाने के लिए राज्य भर में हजारों की संख्या में आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया गया, लेकिन सरकार की बायोडीजल बनाने की योजना बुरी तरह विफल रही। अब आदिवासी चाहते हैं कि उनकी जमीनें उन्हें वापस की जाएं। रायपुर से आलोक पुतुल।
रायपुर जिले के सुंदरकेरा गांव के रहने वाले विठल तारक से अगर आप जेट्रोफा यानी रतनजोत का नाम लें तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गांव की जिस जमीन पर वे खेती करते आए थे सरकार ने वन विभाग की जमीन बताकर कब्जा कर लिया और फिर उस पर रतनजोत लगा दिया। विठल तारक को याद है जब नवंबर 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उनके गांव में रतनजोत लगाने आए थे।
मूल जान नहीं दिस रतन अब्दुल कलाम आज तो दिन भाटम हुई भाटम आयरी से अब्दुल कलाम।
अब्दुल कलाम उस दिन जब रतनजोत लगाने के लिए आए तो हमें वहां जाने नहीं दिया गया। एपीजे कलाम जिस दिन आए उस दिन से हमारी जिंदगी में दुख की शुरुआत हुई। 3 साल तक अपनी जमीन के लिए हमने मुकदमा लड़ा, फिर भी हमारी जमीन हमें नहीं मिली। 4 बेटियां हैं मेरी और मैं भूमिहीन किसी तरह गुजारा करता हूँ। सुंदरकेरा गांव के हम निवासी गहरे दुख में हैं। विठल तारक के शब्द। छत्तीसगढ़ सरकार ने जब बायोडीजल बनाने के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में रतनजोत के पौधे लगाने की शुरुआत की तो सुंदरकेरा गांव भी उसकी जद में आया। राज्य की भाजपा सरकार ने दावा किया था कि 2014 तक छत्तीसगढ़ डीजल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पूरे राज्य में 1,65,000 हेक्टेयर जमीन पर रतनजोत के पौधे लगाए गए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये योजना बुरी तरह से असफल साबित हुई। करोड़ों पौधे सूख गए, लेकिन जिन गांव वालों की जमीन पर कब्जा करके ये पौधे लगाए गए थे उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिली। सुंदरकेरा गांव के आदिवासी लक्ष्मण ध्रुव उनमें से ही एक हैं।
मन थला बैठे हैं ना, खेते नहीं है तो क्या कर रहे हैं। बहुत फायदा होगा क्योंकि कहा थे लेकिन वहां तो कुछ नहीं है।
हम अब बेरोजगार बैठे हैं, खेती नहीं है तो करें क्या। बहुत फायदा होगा कहा गया था लेकिन वहां तो अब कुछ भी नहीं है। रतनजोत का एक भी पौधा अब वहां नहीं है, सब मर गए, उसके निशान तक नहीं बचे हैं। लक्ष्मण ध्रुव के शब्द। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने जहां पौधे लगाए थे वहां अब शिलान्यास का पत्थर तक नहीं बचा है। लेकिन छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी सुमित सरकार के पास बचाव में कई तर्क हैं।
अगर विभाग ने ये पौधे लगाए थे, विभाग को दूसरे बार करने के बाद ही ये जानकारी इकट्ठा करके हमने पौधा तो लगाए लेकिन विभिन्न विभागों का द्वारा ये पौधा लगाए उसके अच्छे से देखभाल नहीं किए और पौधे जो लगाए थे उसका वैरायटी भी सही नहीं था।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का कहना है कि जिन आदिवासियों से रतनजोत लगाने के लिए उनकी जमीनें छीनी गई थीं उन्हें वापस किया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की काविज वनभूमि पर जिन पर वो पीढ़ियों से खेती कर रहे थे उन पर प्लांटेशन किया गया है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक लोगों के उनके वन अधिकारों की पहचान और मान्यता की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती उनकी जमीनों से उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। परंतु छत्तीसगढ़ में जेट्रोफा प्लांटेशन के नाम पर लोगों से उनकी जमीनें छीनी गई हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ के वन मंत्री महेश गागड़ा का कहना है कि रतनजोत जिन जमीनों पर लगाए गए थे वो बंजर जमीनें थीं। हालांकि गागड़ा का कहना है कि अगर किसी आदिवासी की निजी जमीन पर पौधे लगाए गए थे तो उस मामले की जांच की जाएगी।
रतनजोत लगाया गया था आदिवासी जो बड़ा जो भूमि था उस पर लगाया गया था, तो कोई अगर विषय ध्यान में अगर आ जाए तो जरूर उस पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्थिति नहीं था कि जमीन खाली करा के नहीं लगाया गया, क्योंकि FRA 2005 से अगर काफी जमीन तो उनको FRA ऑलरेडी दिया जा चुका है। और कहीं पर जैसे आपके ध्यान विषय है तो अगर जरूर उसमें विचार करेंगे कहाँ पर अगर स्थिति है।
जिन आदिवासियों के लिए जल जंगल और जमीन सब कुछ हो उन्हें अगर इन सब से ही वंचित कर दिया जाए तो स्वाभाविक है उनकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में रतनजोत के नाम पर हजारों आदिवासी परिवारों के साथ यही हुआ और वन मंत्री के दावे के बाद भी कम से कम अभी तो उन्हें न्याय मिलने की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
म्यांमार में एक छोटी तादाद रोहिंग्या हिंदुओं की भी है जो देश के रखाइन प्रांत में बिना नागरिकता के रह रहे हैं। एक ओर जहां हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली है, वहीं सैकड़ों हिंदुओं ने बांग्लादेश के कुछ हिंदू घरों में पनाह ली है। नितिन श्रीवास्तव ने बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर से ये रिपोर्ट भेजी है।
साल भर पहले जश्न के बीच अनीता धर शादी के जोड़े में थीं। अब मां बनने का समय करीब आ रहा है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं से मीलों दूर अनीता के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। उधार के कपड़े और सामूहिक भोज के बीच जिंदगी करवट ले रही है। इनकी उम्र महज 15 साल की है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अनीता ने पूरी जिंदगी जी ली है।
काले नकाब पहने कुछ लोग आए, लूटपाट की और मेरे पति को उठा कर ले गए। अगले दिन पास के जंगल में उनकी लाश मिली। सिर धड़ से अलग था और शरीर में हाथ नहीं थे। अपनी कोख में पलने वाले बच्चे के बारे में सोचे बिना मैं वहीं से भागी। 3 दिनों तक भूखे पेट घने जंगलों से होकर हम यहाँ पहुँच सके।
पिछले दिनों जातीय हिंसा की वजह से लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के अलावा हिंदुओं की आबादी भी रहती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि म्यांमार से रोहिंग्या हिंदुओं ने भी भागकर पड़ोसी देश में शरण ली हो। शोभा रुद्र इसी बात से खुश हैं कि कम से कम अपने परिवार के साथ तो हैं।
पूरा परिवार था हमारा। एक शाम मेरे चाचा के घर पर हमला हुआ और उन्हें गोली मार दी गई। बलात्कार करने के बाद मेरी चचेरी बहन को भी मार डाला। हमें भागना पड़ा और वो सब इतना दर्दनाक है कि हम कभी वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम शांति से तो हैं, कोई हमें खदेड़ नहीं रहा है।
ये रोहिंग्या हिंदू म्यांमार से जान बचाकर भागने के तजुर्बे को एक बुरा सपना मान उसे भुलाने की जद्दोजहद में है। जाहिर है इसमें बड़ी भूमिका उन बांग्लादेशी हिंदुओं की भी है जिनके घर में इन्हें पनाह मिल सकी। अनीता धर की ही तरह 160 रोहिंग्या हिंदू परिवार हाल ही में म्यांमार से भागकर बांग्लादेश के इस कॉक्स बाजार के कुतुबोलांग इलाके में पहुंचे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इस सीमावर्ती गाँव में सिर्फ 25 ऐसे परिवार रहते हैं। एक लंबे समय के बाद इन्हें मेहमान नवाजी का मौका मिला है। बाबुल उनमें से एक हैं जिन्होंने शरणार्थियों को अपने घर में रहने की जगह दी है। बाबुल ने बताया,
हमने देखा ये लोग बेघर हैं और इन्हें मदद की जरूरत है। मेरी अपनी कोई जमीन नहीं कि मैं इन्हें घर बनाने के लिए दे सकूं, इसलिए मैंने इन लोगों को अपने घर में शरण दी।
अपना जन्म स्थान छोड़ने के दौरान इन रोहिंग्या हिंदुओं ने अपनों को भी खोया है, लेकिन अब कम से कम एक पराये देश में उन्हें अपने जैसे लोगों का सहारा जरूर मिल गया है। नितिन श्रीवास्तव, BBC, कॉक्सेस बाजार, बांग्लादेश।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की करीबी हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ने पटियाला से गिरफ्तार कर लिया है। राम रहीम के जेल जाने के बाद से वो फरार थीं। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बीएसएफ कैंप पर मंगलवार को चरमपंथी हमला हुआ, जिसमें बीएसएफ के एक एएसआई की मौत हो गई और तीन जवान घायल हो गए। हमला करने वाले तीनों चरमपंथी भी मारे गए हैं। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ अमेरिका के रेनर वेइस, बैरी बैरिश और किम थोर्प को मिला है। उन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स पर काम करने के लिए इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।